ये आकाशवाणी है। अब आप सिद्धार्थ सिंह से समाचार सुनिए। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संसद से पारित हो गया है। राज्यसभा ने 12 घंटे की चर्चा के बाद इसे आज मंजूरी दी। 128 सदस्यों ने संशोधन विधेयक के पक्ष में और 95 ने विपक्ष में मतदान किया। लोकसभा से ये विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य विरासत स्थलों के संरक्षण और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधानों के साथ वक्फ परिसंपत्तियों का समुचित प्रबंधन करना है, साथ ही प्रबंधन में पारदर्शिता तथा वक्फ बोर्ड और स्थानीय प्राधिकरणों के बीच समन्वय बढ़ाकर प्रशासन में सुधार लाना है। विधेयक का लक्ष्य मुस्लिम महिलाओं, विशेषकर विधवा और तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाना भी है। इसके तहत वक्फ बोर्ड में विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर बेहतर प्रशासन के लिए वक्फ बोर्ड को अधिक समावेशी बनाया जाएगा। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस अधिनियम से मुस्लिम समुदाय के करोड़ों निर्धन लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति में सभी सदस्यों के सुझावों पर विचार किया गया और उन्हें विधेयक में शामिल किया गया। विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि केवल मुस्लिम समुदाय ही वक्फ से लाभान्वित होंगे और वक्फ परिसंपत्तियों के प्रबंधन में किसी भी गैर मुस्लिम का हस्तक्षेप नहीं होगा। संसद ने मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 को भी मंजूरी दे दी है। ये विधेयक मुसलमान वक्फ अधिनियम 2023 का स्थान लेगा। संसद ने विमानन वस्तु में हितों की सुरक्षा विधेयक 2025 पारित कर दिया है। विधेयक विमानन वस्तु में हितों की सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। ये मोबाइल उपकरणों में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर कन्वेंशन और विमानन उपकरण से संबंधित मामलों पर मोबाइल उपकरणों में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर कन्वेंशन के प्रोटोकॉल को लागू करने का भी प्रयास करता है, जिन पर 2001 में केप टाउन में हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और थाईलैंड ने सूचना प्रौद्योगिकी, समुद्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, हस्तशिल्प और हथकरघा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए 6 समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेंतोगर्तान शिनावात्रा के बीच बैंकॉक में द्विपक्षीय वार्ता के बाद ये समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों ने पूर्वोत्तर भारत और थाईलैंड के बीच पर्यटन, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर बल दिया। श्री मोदी ने कहा कि भारत आसियान एकता का पूरा समर्थन करता है। थाईलैंड सरकार ने श्री मोदी की यात्रा के अवसर पर 18वीं शताब्दी की रामायण भित्ति चित्रों को दर्शाते हुए एक विशेष डाक टिकट जारी किया। श्री मोदी को थाईलैंड की प्रधानमंत्री ने पाली में बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक का एक विशेष संस्करण भी भेंट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात से लाए गए भगवान बुद्ध के अवशेषों को थाईलैंड भेजने की पेशकश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के बैंकॉक में थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने श्री शिनावात्रा के साथ अपनी मुलाकात को सुखद बताया। श्री मोदी ने कहा कि श्री शिनावात्रा को शासन और नीति निर्माण से संबंधित मामलों का व्यापक अनुभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज से शुरू हो रहे श्रीलंका दौरे के दौरान स्मारक पट्टिकाओं पर श्रीलंका भारत को भारत गणराज्य के रूप में संदर्भित करेगा। श्रीलंका के मीडिया ने बताया कि भारत द्वारा सहायता प्राप्त 3 परियोजनाओं के लिए स्मारक पट्टिकाओं का अनावरण किया जाएगा, जिसमें सांपुर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला, दाम्बुला में एक कोल स्टोरेज कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन और 5,000 धार्मिक पूजा स्थलों पर 5,000 रूफटॉप सोलर पैनल की कमीशनिंग शामिल है। स्मारक पट्टिकाओं पर भारत नाम लिखा होगा, लेकिन श्रीलंकाई अधिकारी आधिकारिक संचार में इंडिया नाम का उपयोग करेंगे। बिहार में चैती छठ पूजा के तीसरे दिन कल शाम श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य दिया। गंगा, गंडक, कोसी और अन्य प्रमुख नदियों के किनारे विभिन्न छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। आईपीएल क्रिकेट में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 80 रन से हरा दिया। 201 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद बाद की टीम 16 ओवर 4 गेंद में 120 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।